मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत तो हम लोग वही आईएएस 2022 की तैयारी पर कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो COP है इसके बारे में कहीं कहीं आपको कुछ दूसरे तरह के शब्द भी पढ़ने को मिल सकते हैं। जो सी है कहीं कहीं मैंने देखा है कि उसकी जगह कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कांग्रेस, कांग्रेस ऑफ पार्टीज। तो प्लीज इसे करेक्ट कर लें, ये बेसिकली कांग्रेस ऑफ पार्टीज न हो करके ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हालांकि ठीक है कि कांग्रेस का एक मतलब कॉन्फ्रेंस से होता है जहां सम्मेलन होते हैं, लेकिन चूंकि संज्ञा है और संज्ञा में बदलाव नहीं किए जाने चाहिए, किए ही नहीं जा सकते, तो इसे आप करेक्ट कर लें, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी जो सम्मेलन हो रहा है वो COP 26 है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां सम्मेलन है। इसके बारे में मैं एक दो बातें आपसे और करना चाहूंगा। एक बहुत पहले सम्मेलन हुआ था 1992 में, अगर आपने एनवायरनमेंट की थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आपने अर्थ समिट के बारे में शायद पढ़ा होगा, पृथ्वी सम्मेलन है ना, जो रियो द जनेरियो में हुआ था। अरे बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जब आप एनवायरनमेंट की तैयारी करेंगे तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन रहा है। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया सम्मेलन था और इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। यूनाइटेड नेशंस, याद रखिए ये बहुवचन में है, नेशंस, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तैयार करना है, एक ढांचा तैयार करने से संबंधित कन्वेंशन है, सम्मेलन है, किसके ऊपर, विषय क्या है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ये 1992 में हुआ था। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगा और वो है UNFCCC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन रहा है, आपको जानकारी में होनी चाहिए। अब इसके बाद फिर 1995 से COP की शुरुआत हुई है। एक सम्मेलन के बारे में आप और अक्सर पढ़ रहे होंगे और आपको जानकारी भी हो सकती है कि वो पेरिस सम्मेलन, ये पेरिस में हुआ था इसलिए पेरिस सम्मेलन कहते हैं, फ्रांस में, पेरिस में। ये भी बेसिकली COP ही था, बस फर्क इतना ही है कि अभी जो हो रहा है वो 26वां था और वो 2015 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था वो 21वां था, बस दैट्स ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में लगातार फिर हर साल सम्मेलन हो रहे हैं जो COP के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी बात, अभी बकायदे ग्लासगो में सम्मेलन चल रहा है, मैं आप लोगों से लगातार बातें कर रहा हूं और जो मैं बातें कर रहा हूं उसके पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि ये जो इतना लंबा सम्मेलन है इसके महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रख सकूं। सच पूछे तो इससे भी बड़ा जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप ये जान सकें कि जब इस तरह की कोई भी घटना घटित हो रही होती है तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इसे केवल एक इंफॉर्मेशन के रूप में मत देखिएगा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, बात खत्म हो गई। आपको इस बात पर भी फोकस करना है कि ये बातें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें क्यों छोड़ दी गई हैं, यह भी आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और इसको रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने सिलेबस की बहुत अच्छी जानकारी हो और साथ ही जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपके जेहन में हों कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी आप सच पूछे तो किसी भी विषय के साथ न्याय कर सकेंगे। दोस्तों सच बात तो यह है कि देखिए जो गाइड किया जाता है, जो गाइडेंस दी जाती है, उसका मूल उद्देश्य ही यही होता है कि आपको भटकने से बचाया जा सके और जो चीजें आपको जाननी चाहिए उन्हें बहुत स्पष्ट किया जा सके। तो आप इसे इस रूप में भी लेंगे। अब आप देखिए कि आज का अगर आपने अखबार पढ़ा हो या न्यूज सुनी हो तो उसमें आपको अब दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने को सुनने को मिली होंगी। इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपने IRIS के बारे में न्यूज में सुना, अखबार में पढ़ा, IRIS, इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर, आई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर का है रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब होता है लचीलापन, यहां हम उसके लिए यूज करेंगे संवेदनशील। आईलैंड, फिर से जो आई है वो है आईलैंड स्टेट्स, इसका मतलब यह हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, एक संगठन बनाया गया है या एक प्रोग्राम बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर किन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो संवेदनशील है, कौन संवेदनशील, आईलैंड स्टेट्स यानी कि जो द्वीप हैं समुद्र के बीच बीच में जो आईलैंड बने हुए हैं, वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नेशंस हैं। आप साउथ ईस्ट एशिया में आप जाकर के देखें तो कितने आपको आईलैंड नेशंस दिखाई देंगे, हमारे यहां भी आईलैंड है, अंडमान निकोबार आईलैंड है, लक्षद्वीप समूह आईलैंड है, ये सब आईलैंड है, ये समुद्र के बिल्कुल बीच में है। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा खतरा और तुरंत जो खतरा होगा इन आईलैंड पर ही होगा, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में जल का तापमान बढ़ेगा तो ये सब डूब जाएंगे। आइरिस बनाया गया है और इसे बनाने में दो लोगों का भी रोल है, ब्रिटेन और इंडिया, आप देख ही चुकी इसमें इंडिया शामिल है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। अगर आप इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखेंगे, शायद एक दो दिन चार दिन में आपको पढ़ने को मिल जाए, एडिटोरियल कमेंट्स आ जाए, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि ये भारत ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखिए साउथ ईस्ट एशिया के जब आप नेशन पर जाते हैं, इधर जब हिंद महासागर की हम बात करते हैं, दक्षिण चीन सागर की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि इधर चीन किस तरीके से अपने प्रभुत्व को लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा है, दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने ये स्थापित करके ये मैसेज दे दिया है कि हम आपके प्रति बहुत संवेदनशील हैं, आपकी हमें बहुत चिंता है और हम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे ताकि ऐसे संकट से आप बच सकें। तो हमने कहीं ना कहीं उनकी सद्भावना हासिल करने की कोशिश की है। मैं एक डिप्लोमेटिक एंगल बता रहा हूं जो मेरी समझ में आया है, हो सकता है कि ऐसा न भी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई IRIS। जो दूसरी कल जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है वो है कि 100 से अधिक देशों ने ये आप यूं कह लीजिए कि समझौता किया है कि वे अपने देशों में वनों की कटाई को रोकेंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे, वन को कटने से रोकेंगे और साथ ही साथ वनों का जो क्षेत्रफल है उसका जो दायरा है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेट चेंज के लिए वनों का विस्तार एक बहुत बड़ा उपाय है, आप जानते हैं, इसके बारे में मुझे यहां बात करने की जरूरत नहीं है। तो यह भी एक अच्छा साइन है कि 100 से अधिक देशों ने किया। हालांकि देखिए जब हम UNFCCC की बात करते हैं तो 197 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और बकायदे साइन भी किए हैं, और दुनिया में इतने ही देश हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सदस्यता है लगभग इसी के आसपास है, तो कम से कम 100 से अधिक देशों ने इस तरह का एक समझौता तो किया है, तो थोड़ी सी आप यूं कह लीजिए कि आशा बंधती है। हालांकि आपको एक बात और बता दूं कि इसी तरह का समझौता सन 2014 में भी किया गया था, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आया, लेकिन शायद उस समय इतना प्रेशर नहीं था। अब तो जलवायु के लिए पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो गया है और यूरोप के कई देशों में तो बकायदे जलवायु पर आधारित, क्लाइमेट चेंज पर आधारित पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, ग्रीन पार्टीज वगैरह बन गई हैं जो जलवायु के मुद्दे को उठा रही हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि जो राजनेता हैं इसकी बहुत ज्यादा उपेक्षा कर सकेंगे। तो दोस्तों ये दो खबरें जो थी वो मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। कल एक बात मैंने बताई थी, मैं दोहरा नहीं रहा हूं जानबूझकर, ताकि आप अपने दिमाग पर जोर डाल करके सोच सकें कि मैंने क्या बात बताई थी। आज मैं दूसरी बात बता रहा हूं सैद्धांतिक तौर पर। कम पढ़ें, याद रखिए, हालांकि आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि कम पढ़ें लेकिन महत्वपूर्ण पढ़ें। कम पढ़ें का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन उनको पढ़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हें केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि अच्छे से समझना है। दोस्तों सच पूछे तो जो आतंक फैला हुआ है IAS की तैयारी का, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को लेकर के ही है कि पता नहीं कहां से क्या नहीं पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया जाता है। और सच पूछे तो जब आप बहुत गंभीरता के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मेंस में भी एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे और प्री में भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होती है तो जो एक फैलाया जाता है कि खूब पढ़ना चाहिए, खूब किताबें, खूब नोट्स, ये वो, तो आपके मन में उसके प्रति भरोसा हो जाता है कि हाँ यार देखो ये तो कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो अब ये जो कुछ भी पूछ लिया गया है इसको अगर हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर जब बहुत ज़्यादा पढ़ने की बात हमारे मन में बैठ जाती है तो हम खूब सारा पढ़ने लगते हैं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, कहीं ये भी ना आ जाए, कहीं ये भी ना आ जाए, कहीं वो भी ना आ जाए। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो जहां तक के टॉपर्स रहे, फर्स्ट टेन में भी रहे हैं, आप उनकी मार्कशीट उठा करके देखिए। दो चीजों पर आप ध्यान दीजिए। पहली बात कि उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्कोर कितने हैं। मोटे तौर पर चलिए मैं बता देता हूं कि जो फर्स्ट टेन में जो स्टूडेंट्स आते हैं, 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर होता है दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो उनका जो स्कोर होता है वो मोर देन 275 से लेकर के 300 के बीच में रहता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अगर वो 300 के आसपास हैं तो परसेंटेज की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि 60% स्कोर है, ठीक है। फिर हम जनरल स्टडीज पर आते हैं। जनरल स्टडीज 1000 नंबर का होता है, 250-250 के चार पेपर होते हैं। उन सबको जोड़िए और देखिए कि उनका स्कोर टोटल कितना है, तो पता लगेगा कि 1000 में उनका जो स्कोर है वो लगभग लगभग 450 के आसपास है। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, 450 के आसपास है। हो सकता है कि जो फोर्थ पेपर है जो एथिक्स का, उसमें बहुत हाई स्कोर करने पर थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन सामान्यतः 450 स्कोर होता है। सोच करके देखिए कि यहां 1000 में 450 अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें परसेंटेज में तो 45%। और यही स्टूडेंट है जो ऑप्शनल में 60% स्कोर कर रहा है लेकिन जनरल स्टडीज में 45% स्कोर कर रहा है, फर्स्ट टेन में आ रहा है, टॉपर बन रहा है। तो बस आप सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप इस पर निष्कर्ष निकालेंगे तो हो सकता है कि आपका निष्कर्ष मेरे इस निष्कर्ष को प्रूफ करे कि कम पढ़ें लेकिन महत्वपूर्ण पढ़ें। इस पर हम लोग और आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जो हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस होने जा रही हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में, तो उसमें एक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उनका नाम है आशुतोष भोंसले, जो नासिक महाराष्ट्र से हैं। तो आशुतोष, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से एक दोस्त हैं अधिकरण महतो, धनबाद झारखंड से। आपको अधिकरण स्टेट सिविल सर्विस के प्री क्वालिफाई के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, अब दीपावली है, आप लोग खूब उमंग के साथ दीपावली मनाएं। अब 4 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। दीपावली का जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन भी हम लोग डेली ऑडियो लेक्चर की छुट्टी रखते हैं। क्यों रखते हैं आप जानते हैं कि रात भर आप दीपावली मनाएंगे तो अगले दिन आप फ्रेश नहीं हो रह सकेंगे, वो आप उतने ताजे नहीं रह सकेंगे। 4 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को, तब और बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, एक बार फिर से शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।